Okay, so hi everyone. My name is Somjit Goswami and I am the founder of Competition Crusade Classes. Now, this is my standard template of, you know, welcome message, you can say whatever. So, podcast. Spotify के ऊपर podcast किए हुए काफ़ी time हो गया क्योंकि मैं recently काफ़ी busy हो गया था अपने Facebook page और Telegram channel, Facebook groups, YouTube चैनल, दुनिया भर के ग्रुप्स और चैनल्स को लेकर के. तो जितने भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, सबके ऊपर कंपटीशन क्रुसेड क्लासेस को जाइए, सर्च करिए और उनको सब्सक्राइब करिए. क्या होता है वो सब्सक्राइब करने से, कि आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ जाते हो. अब मैं अभी तक के फ्री प्रेप मॉडल को फॉलो करता हुआ आया हूँ. मैंने कभी तक कोई कोर्सेस बेचे नहीं हैं. मेरे VRC का एक लाइव कोर्स जो मैंने स्टार्ट किया था पिछले महीने में, वो चल रहा है, बट वो उसके रजिस्ट्रेशन बंद हो गए. तो हम उन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हैं. अभी कुछ दिनों पहले मैं रिसेंटली स्पॉटिफाई चेक कर रहा था और मुझे देखा कि उसके ऊपर मेरे 1000 लिसनर्स हैं. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया है और हर महीने कुछ 20-25 लोग मेरे पुराने पॉडकास्ट्स को सुन रहे होते हैं. अब ऑब्वियसली वो जो मैंने तब रिकॉर्ड करे थे वो अभी भी रेलेवेंट है और वो आगे भी रेलेवेंट होगा, क्योंकि कैट का जो सिलेबस है एज सच वो तो चेंज होने नहीं वाला. लेकिन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि एक्सपीरियंसेस तो हम ऐड कर ही रहे हैं अपने अपने साथ, तो वाई नॉट जस्ट टॉक अबाउट दोज एक्सपीरियंसेस और थोड़ा बहुत वो नुआंस ऐड करते हैं, थोड़ा बहुत तड़का लगाते हैं, मसाला करते हैं. तो पॉडकास्ट में वो सब करते हैं. सबसे पहली बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि हमें YouTube में भी ज़रूर सर्च करिए कंपटीशन क्रुसेड क्लासेस एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब बिकॉज यू विल रियलाइज दैट आई अपलोड अ लॉट ऑफ फ्री कॉन्टेंट ओवर देयर विच इज़ I mean, at least I think, which is going to be really beneficial for any aspirant, whoever cares to follow us. अब आते हैं CAT prep पे. In general, 2023 की ही बात करते हैं. सबसे पहला चीज़, सर हम मार्च के महीने में हैं और अभी तक हमने सीरियसली prep start नहीं करा है. ये पहले students होते हैं. दूसरे तरह के स्टूडेंट होते हैं कि सर हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है सीरियसली प्रिपरेशन करना, लेकिन हम किसी कोचिंग में नहीं गए हैं. तीसरे तरह के स्टूडेंट्स होते हैं कि सर हम सीरियस भी हैं, हमने कोचिंग में ज्वाइन कर लिया है, बट स्टिल कुछ कुछ डाउट्स आ रहे हैं. मैं एक मज़े की बात बता दूँ, आप तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट एक ही कैटेगरी में बिलोंग करते हो ऑनेस्टली. और वो इसलिए क्योंकि देखो, सवाल तो एक ही तरह के होंगे, चाहे वो स्टूडेंट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो, सेल्फ स्टडी हो, या उसने अभी सोचा है अपीयर करने का बट वो उतना सीरियस नहीं है. तो सबसे पहले तो मैं जो आपके सबसे जेनेरिक क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दे देता हूँ जल्दी से, उसके बाद हम एक्सपीरियंस पे बात करेंगे, थोड़ा इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे कि सर हम DILR कहाँ से करें, हम क्वांट्स कहाँ से करें, हम VRC कहाँ से करें. सबसे ईजी सवाल इस सवाल का जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि ये सारा प्रैक्टिस आप कंपटीशन क्रुसेड क्लासेस के चैनल्स के थ्रू कर सकते हैं. हम कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं, हम मेंटरिंग भी प्रोवाइड करते हैं. और जब मैं हम कह रहा हूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि करेंटली जो मेरे साथ मेरे एक को फैकल्टी थे उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है बी स्कूल, तो वो अपने बी स्कूल में जा रहे हैं. सो थोड़ा सा सारी चीज़ें अभी मैं ही संभालूंगा, सारी डिज़ाइनिंग मैं ही करूँगा. लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या आपका जो कंटेंट है क्या वो रेलेवेंट होगा. सबसे पहले हमारा कंटेंट है क्या. देखो, मैं अपने आप को एक एजुकेटर मानता हूँ, मैं अपने आप को कोई कंटेंट क्रिएटर या डेवलपर उतना नहीं मानता. हाँ, हम वीडियोस बनाते हैं, हम क्लासेस लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन हम क्वेश्चन बैंक्स वगैरह नहीं बनाते किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का या अपने इंस्टीट्यूट के लिए. हम रेफ़र करते हैं ओरिजिनल कैट के पेपर्स का और हम रेफ़र करते हैं जो प्रीवियस ईयर के मॉक्स हैं और जो करंट ईयर के मॉक्स हैं उनका. अब आप ये बोलोगे कि सर ये तो कहीं ना कहीं अनएथिकल हो सकता है. हालांकि अगर ये अनएथिकल है भी, तो तो इस चीज़ से किसी एस्पिरेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर इंस्टीट्यूट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, और मैं इसको सिम्बायोटिक कह रहा हूँ, पैरासाइटिक नहीं कह रहा हूँ। पैरासाइटिक रिलेशन तब होता जब हम उनके यू नो रिसोर्सेज को यूज़ करते बिना उन्हें पैसा दिए। यहाँ पे हम उनके, जब भी हमारे बच्चे मॉक्स परचेस करते हैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का, तो उन्हें भी बेनिफिट होता है, उन इंस्टीट्यूट्स को पैसे जाते हैं, तो वहाँ से तो आप समझ रहे होगा कि इतना कोई वैसा ससीन नहीं है, हम सिर्फ मॉक्स पर रिलायंट हैं। अब बात यह आती है कि तो सर ये सब जो वो यूट्यूब चैनल्स पर दिखाया जाता है, ये जो यू नो फार्मास लिल थ्योरम, यू नो चिकन मैग्नेट थ्योरम, और ये मास पॉइंट ज्योमेट्री, ये सब किस किताब से पढ़ना है? ऑनेस्टली बोलूँ तो ये सब किसी किताब में आपको मिलेगा भी नहीं, हार्डली किसी किताब में मिलेगा, मिलेगा तो भी। और दूसरी बात ये कि ये सब चीज़ें बिल्कुल ही इरेलेवेंट है। और रेलेवेंट क्या है फिर? देखिए, रेलेवेंट है जो आपने 12th तक के मैथमेटिक्स में पढ़ा है, आपके 12th स्टैंडर्ड, आप किसी भी बोर्ड के हो सकते हैं, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, लेकिन आपने 12th तक में जो भी मैथमेटिक्स पढ़ा है, अगर आपने इन चीज़ों का नाम वहाँ नहीं सुना, मास पॉइंट ज्योमेट्री एंड ऑल दैट नॉनसेंस, तो ये सब चीज़ें काम की नहीं है आपकी। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ऑयलर थ्योरम, ये सब किसी काम के नहीं है। दी ओनली थिंग दैट इज़ रिलेवेंट इज़ हाउ यू कैन थिंक लॉजिकली। कुछ चीज़ें जो कि थोड़े से यू नो डिफ़िकल्ट होते हैं इनिशियली स्टूडेंट्स को समझने में, उन्हें हम कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही फेमस सा एक क्वेश्चन है जिसको कि हम यू नो एडिटिव स्ट्रिंग ऑफ मॉड्स कहते हैं। अगर आप में से किसी ने रिपीट करा है कैट तो आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, मॉड एक्स प्लस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस सिक्स, इस तरह करके एक स्ट्रिंग बना दिया। बेसिकली स्ट्रिंग है किसका? मॉड प्लस मॉड प्लस मॉड प्लस मॉड प्लस मॉड। अब इस तरह के क्वेश्चंस को एल्जेब्रिकली सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उस केस में हम स्लोप वगैरह का हेल्प ले करके और थोड़ा सा यू नो एक्सटर्नल आइडियाज़ को यूज़ करके इसे सॉल्व करते हैं, और ये शायद आपने अपने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा। तो बट ये इतना जेनेरिक है, ये इतना सिंपल है कि इसके लिए मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑन द स्पॉट भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा तो आप ऑन द स्पॉट सॉल्व करोगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं ऑयलर थ्योरम की बात करूँ या चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की बात करूँ या फॉर दैट मैटर्स यू नो मास पॉइंट ज्योमेट्री की बात करूँ, तो ये लॉजिकल नहीं है, इसको आप ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक मेथोडिकल अप्रोच के थ्रू इसको सीखना पड़ेगा, पर्टिकुलर ये लॉजिक के साथ आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो आप लॉजिक से सॉल्व नहीं कर सकते, वो कैट में नहीं आते। एंड व्हाई डू आई से दैट? हु हैज़ गिवन मी द अथॉरिटी टू से दैट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट कम इन कैट? सी, दिस इज ऑल्सो वेरी लॉजिकल, क्योंकि कैट प्रोवाइड्स यू विद अ कैलकुलेटर। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में अगर वो एप्टीट्यूड टेस्ट आपको कैलकुलेटर दे रहा है, यानी कि आपको कैलकुलेशंस करने के लिए वो एक टूल दे दे रहा है, सॉफ्टवेयर दे दे रहा है, आप खुद ही सोचो उस पर्टिकुलर एप्टीट्यूड टेस्ट में इसका मतलब है कि कैलकुलेशन टेस्ट ही नहीं हो रहा है, उसमें लॉजिक टेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे इवन इन डेटा इंटरप्रिटेशन अगर कोई अनयूजुअल सा DI चार्ट अगर आपके पास आ जाए, तो इट इज़ मोस्टली अबाउट हाउ यू रिप्रेजेंट दैट डेटा इन अ टेबल, हाउ यू कैन इंटरप्रेट दैट टेबल एंड हाउ यू कैन आंसर सम क्वेश्चंस। थोड़ा बहुत यू नो जो कैट का फेवरेट टाइप्स है, मैक्सिमा मिनिमा जिसे हम ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, वो सब टेक्निक्स भी आते हैं, बट वो भी बड़े लॉजिकल टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहली बात जो ये है कि सर किसी पर्टिकुलर किताब में ये दिया है, किसी पर्टिकुलर किताब में वो नहीं दिया हुआ है, हम कौन से किताब से पढ़ें? आप सिर्फ लॉजिक को समझो। हमारे चैनल्स में जब भी आप जुड़ोगे आपको लॉजिक ज़्यादा सिखाया जाएगा और मैथमेटिक्स आप खुद सीख जाओगे। अब बात करते हैं VARC का। सर हमें किसी ने बताया कि बहुत ज़्यादा रीडिंग करना चाहिए, RC वारसी अटेम्प्ट करना छोड़ो, रीडिंग कॉम्प्रेंशन सॉल्व मत करो, बस रीडिंग करते जाओ, इयॉन के एसेज रीड करो. अच्छा, इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है. कुछ साल पहले, प्रिसाइसली अगर मैं बोलूँ तो 2017 से, एक्चुअली 2017 से एक ट्रेंड सा बना है कि कैट के हर एक स्लॉट में एक आधा रीडिंग कॉम्प्रेंशन पैसेज ऐसा आ जाता है जो किसी एक यू नो इंटरनेशनल मैगजीन या जर्नल से उठाया जाता है. ठीक है, अलबत्ता लोगों को ये लगता है कि जितने भी वेबसाइट्स हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर के इऑन से लेकर के गार्डियन से लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के इकोनॉमिस्ट से लेकर के न्यू स्टेट्स जर्नल से लेकर के यू नेम इट, आप उसे नाम करो, उनको सबको बैठ के पढ़ने लगते हैं. प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है मेरे भाई कि जब आप बहुत ज़्यादा रीडिंग कर रहे हैं, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू खाली टेबल्स करना. अब अगर मैं आपको VARC के प्रिपरेशन में ग्रामर पढ़ाने बैठूँ, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव ये सब पढ़ाऊँ, तो आप बोलोगे कि सर आप मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ. एग्जैक्टली, जब आप रीडिंग की बात करते हो तो भी वही चीज़ है. देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ समझो कि आपको डाइवर्स आइडियाज पढ़ना आता है या नहीं आता है, उससे कैट का कोई लेना देना नहीं है. अभी जो रिसेंट के जो कैट पेपर्स बन रहे हैं पोस्ट पैंडेमिक के बाद, यहाँ पे पैसेज के नंबर्स जो हैं वो घट गए हैं. पहले 5 पैसेजेस आते थे, अभी 4 पैसेजेस आ रहे हैं. तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं, अब वो लैंग्वेज से हट के, कॉम्प्रिहेंशन से हट के, यू नो ग्रामेटिकल नॉलेज से हट के, वर्ड मीनिंग से हट के, अब वो ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड हैं, जिसको कि हमने वर्बल एबिलिटीज़ के एक चैप्टर भी बनाया है. हम कहते हैं ना क्रिटिकल रीजनिंग, तो क्रिटिकल रीजनिंग इज अ सब टॉपिक ऑफ VARC टॉपिक. अब प्रॉब्लम यह है कि जो क्रिटिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनका बड़ा ही स्टैंडर्ड सॉल्विंग मेथड होता है. एक आर्ग्यूमेंट एनालिसिस है जिसमें कि प्रेमिस दिया हुआ है, कंक्लूशन दिया हुआ है और कुछ एक अनस्टेटेड अजम्पशंस दिए होते हैं. हाँ, अब यही इसी चीज़ को जो बच्चे अच्छे से समझ लेते हैं, प्रेमिस को आइडेंटिफाई करते हैं, कंक्लूशन को आइडेंटिफाई करते हैं और अनस्टेटेड अजम्पशंस को समझते हैं, वो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं. और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको भी पता होगा वैसे, कैट में जो RC के क्वेश्चंस, एक आध RC का क्वेश्चन आ रहा है, एक पूरा RC बेस्ड होता है क्रिटिकल रीजनिंग पे. तो आप इस चीज़ को समझो कि रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए जो जिसे पता है रीड क्या करना है, एक कोई भी सूडो यू नो इंटेलेक्चुअल वेबसाइट उठा करके आप पढ़ने लग जाओ, उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा. ओके, अब बात करते हैं कि अगर रीडिंग उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या इंपॉर्टेंट. सबसे पहला चीज, एक बहुत ही यू नो सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि सपोज अगर आपको एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है, एक बहुत अच्छा फुटबॉलर बनना, तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा करनी चाहिए. अब किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर आपको वर्कआउट बहुत अच्छा करना पड़ेगा, आजकल जो प्लेयर्स आते हैं वो बहुत फिट होते हैं. हाँ, ये सही है. अब किसी बच्चे ने हाथ खड़ा करके बोला कि सर आपको ना मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि जब आपका दिमाग शांत रहेगा तभी तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे. ये भी सच है. किसी बच्चे ने हाथ खड़ा करके बोला कि सर आपको एंगर मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए, तो सारे लोग सुपरफिशियल बातें करते रहे. फिर किसी बच्चे ने हाथ खड़ा करके बोला कि सर आपको क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सारे चुप हो गए, सबके मुंह पे ताला लग गया. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है क्रिकेट प्रैक्टिस करना. वो सब कुछ जो इसके इर्द गिर्द है, वर्कआउट करना, मेडिटेशन करना, एंगर मैनेजमेंट, या फिर आप कह लो पब्लिक स्पीकिंग, यू नो सॉफ्ट स्किल जो डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमती हैं, वो है एक बेटर क्रिकेट प्रैक्टिस के। अभी क्या अगर आप वर्कआउट ना करो और आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, ये पॉसिबल है सिर्फ क्रिकेट प्रैक्टिस से? हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप कुछ 20, 25, 30 साल पहले चले जाओ तो वहाँ के जो स्पोर्ट्समैन थे वो इतने ज़्यादा फिट नहीं थे, कुछ तो ज़्यादा दौड़ भी नहीं पाते थे। लेकिन आज आपको ऑलराउंडर बनना पड़ता है। तो या कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे आप ठीक कर लेते हो, लेकिन अल्टीमेट जो गोल है वो अभी भी क्रिकेट प्रैक्टिस ही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको पता चल गया कि अगर मैं आपको मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में भी कुछ लोग कहते हैं कि सर आपको फैक्टोरियल आना चाहिए, आपको टेबल्स आना चाहिए, आप क्यूब्स आना चाहिए, स्क्वायर्स आना चाहिए, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन आने चाहिए, रेशियो इक्विवेलेंट्स आने चाहिए। ये सब तो सही है, टेबल्स वगैरह तो सही है, ये सब तो आना चाहिए, बट ये वही है, ये आपका यू नो मेडिटेशन और वर्कआउट और एंगर मैनेजमेंट है। मैथमेटिक्स का जो कोर है, जो एसेंस है, वो क्या है? वो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। और ज़्यादा अगर डाइसेक्ट करो तो हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक अवेयरनेस होना कि ये क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है और आप इसको प्रोवाइड क्या कर रहे हो, ठीक है? हर क्वेश्चन, हर मैथमेटिकल क्वेश्चन, हर वर्बल एबिलिटीज़ का भी क्वेश्चन, चाहे वो आरसी का ही क्वेश्चन क्यों ना, एवरी क्वेश्चन गिव्स यू सर्टेन ट्रिगर्स, आपको बस उन ट्रिगर्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करना होता है। लेकिन ये सब सुपरफिशियल ट्रिवियल बातों में हम उलझा देते हैं स्टूडेंट्स को, और फिर हमें उन्हें साल साल भर का कोर्स बेचना होता है, और हमें भी पता है यार कि अगर हम उन्हें सोचने पे छोड़ दें तो वो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो इसीलिए हम उनका ऐसा कोर्स बना करके उनका दिमाग घुमा देते हैं कि वो लोग सोचने का टाइम ही नहीं होता। मैं अब ज़्यादा इसको खींचूंगा नहीं, ये थोड़ा लंबा सा बन गया है पॉडकास्ट। मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उसको बोल करके मैं कंक्लूड करूँगा। देखो, ये जो टेस्ट है ना, कैट प्रिपरेशन, ये तुम्हारी ज़िंदगी का मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है, ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। शायद ये टेस्ट आप 3-4 बार दे दो या 5 बार दे दो, बट ये टेस्ट आखिरी टेस्ट होगा, अगर क्लियर हो भी गया और अगर क्लियर नहीं होता है। और ये मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि कैट के प्रिपरेशन के बाद कोई ये नहीं कहता यार 2-3 साल 4 साल बाद जब यूपीएससी की तैयारी करूँगा ना तो ये मुझे हेल्प करेगा, जो चीज़ आपको शायद आईआईटी जेई वगैरह में आप बोलते होंगे कि ठीक है आईआईटी नहीं निकला बट आगे अभी पहले इंजीनियरिंग तो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कुछ ना कुछ और टेस्ट में वो काम आ जाएगा। लेकिन आप समझो इस चीज़ को, ये टेस्ट आप, ये आपका लास्ट टेस्ट है। और ये कोई मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा कि बहुत मेहनत करो, ये करो, वो करो, वो तो आप करोगे। मैं सिर्फ आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये टेस्ट आपका है, स्किल डेवलपमेंट के लिए है। इसमें किसी भी टॉम डिक एंड हैरी को ज़्यादा इंटरफेयर करने मत दो। आई टोटली अंडरस्टैंड कि मेंटर्स की ज़रूरत होती है, मुझे भी पड़ी थी, अभी भी पड़ती है और शायद हमेशा पड़ती रहेगी। और मेंटर्स भी नेसेसरीली आपके टीचर्स ही हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपका मेंटर आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई यू नो मे बी आपके कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, मे बी आपके पेरेंट्स हो, मे बी आपके सिबलिंग्स हो, कोई भी हो सकता है। हाँ, टीचर्स भी हो सकते हैं आपके मेंटर्स। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट आपका है और ये टेस्ट आपके स्किल्स को डेवलप करने का एक बहुत ही अच्छा टूल है। जब आप किसी एक बी स्कूल के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे डाइवर्स फील्ड के लोग मिलेंगे जिनके साथ उठना बैठना, कम्पीट करना, जिनके साथ यू नो को एग्जिस्ट करना, ये तभी अच्छे से हो पाएगा जब इस प्रोसेस को आपने अच्छे से किया होगा। और मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये टेस्ट आपका है, इसको समझना, इसमें सक्सीड करना, इसमें फेल होना, फेल होने के बाद इसको, इसके लर्निंग्स को लेना, फेलियर से आपने क्या सीखा, सक्सेसेस से आपने क्या सीखा, इन सब चीज़ों को जब आप एक्यूमुलेट करोगे तब ये टेस्ट आपका बन जाएगा और आप इसको एस कर पाओगे अच्छे से। लेकिन जब आप ज़्यादा इंटरफेयर करने दोगे बाहर के लोगों को तो फिर आपको पता है क्या होगा, हौच पौच क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो बस इतना ही बोलूँगा, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो कंपटीशन क्रुसेड क्लासेस यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इन चैनल्स पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। नेक्स्ट सेशन पे हम लोग मॉक्स पे डिस्कस करेंगे कि मॉक्स कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, स्पेसिफिकली कैट के लिए, और हम बेटर टेस्ट टेकर कैसे बन सकते हैं। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, अपने कुछ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। तब तक के लिए यू नो द ड्रिल राइट, यू हैव टू गो टू योर यूट्यूब चैनल एंड योर स्पॉटिफाई वेर एवर एंड यू हैव टू सब्सक्राइब। सो विद दैट बीइंग सेड, दिस इज मी सुमजीत गोस्वामी साइनिंग आउट। आई होप यू गाइस क्रैक योर टेस्ट very smoothly. Thank you.